ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा? जी और रोज बाबा अपनी मुरली से हम सब की झोली भरते हैं। अब उन पॉइंट्स से, उन ज्ञान रत्नों से हम सारे दिन खेलें और साथ ही उसकी गहराई में भी उतरें कि बाबा ने जो बात कही है उसके पीछे क्या मर्म है, कैसे हम उससे सदा काल के लिए श्रृंगार कर लें। ये चिंतन हमारा अपना फिर खजाना बन जाता है। जैसे आपने एक बात कही, आज उसी एक बात पर हम विशेष चिंतन करें सभी मिलकर। बहुत गहरी बात है कि जो बाप को मदद करेंगे, बाप के मददगार बनेंगे, उन्हें ही मदद मिलेगी। मदद उनको मिलती है जो मददगार बनते हैं। गहन पॉइंट है। पहले तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि हम भगवान को मदद कर सकते हैं। हमारी एक बड़ी बहन यात्रा कर रही थी, फ्लाइट में थी। किसी यात्री ने, सह यात्री ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने नशे से कहा हम भगवान को मदद करते हैं। उसने उनकी तरफ देखा, क्या? पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या कह रही हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या इस संसार में जो भगवान को मदद करते हैं? लोगों को ये हमारा अभिमान लग सकता है, लेकिन है ये संपूर्ण सत्य। और हम सबको इसका शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम भगवान के मददगार हैं। जब भगवान को नई सृष्टि बनानी थी, कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करना था और उन्हें कुछ खास आत्माओं की आवश्यकता थी, तो भगवान की नजर हम बच्चों पर आकर टिक गई। उन्होंने हमारी ओर देखा कि मुझे मददगार बच्चों की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और हम सब खुशी खुशी तैयार हो गए कि इससे बड़ा हमारा भाग्य, सौभाग्य क्या होगा कि हमारा ये जीवन भगवान के काम आ जाए। हम भगवान के काम आ रहे हैं, हमारा जीवन भगवान के काम आ रहा है, इससे बड़ा भाग्य सारे कल्प में कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये खुशी, ये नशा है हमारे जीवन का कि हम भगवान के काम आ रहे हैं, भगवान की मदद कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी कुछ लोगों का अनुभव होता है कि बाबा सबको तो मदद करते हैं लेकिन मुझे मदद का अनुभव नहीं होता है। कईयों का ये प्रश्न होता है। लोग फोन भी करते हैं या मेल भी करते हैं कि सभी तो इतना अच्छा अच्छा अपना अनुभव सुनाते रहते हैं कि बाबा ने हमें ऐसी मदद की, वैसी मदद की, यहां मदद की, वहां मदद की, सबको इतना मदद करता है, मुझे क्यों मदद नहीं करता? तो आज बाबा ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि मदद उन्हें मिलती है जो मददगार बनते हैं। जितनी मदद करेंगे उतनी मदद भी प्राप्त होती है, ये भी एक लॉ है। इसलिए हम इस बात पर भी गहराई से विचार करें कि हम कैसे मददगार बने बाबा के, कैसे मददगार बने। बाबा ने कहा है कि मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं। इस पर विचार करें, बाबा ने आज कहा मददगार बनो, तो किस प्रकार की मदद बाबा हमसे चाहते हैं और क्या हम वो मदद कर रहे हैं? आज क्लास में हम इस पर चर्चा भी करें और साथ साथ चेकिंग भी करें कि मैं कितनी मदद कर रहा हूं, क्योंकि जितनी हम मदद करते हैं बाबा को उतने ऊंच पद के हम अधिकारी बनते हैं, उतनी आने वाली जो दुनिया है उसमें हमारा श्रेष्ठ भाग्य, सारी कल्प के लिए हमारा श्रेष्ठ भाग्य इस पर ही निर्भर करता है कि हम कितने मददगार बन पाते हैं। खुला ऑफर है कौन कितनी मदद कर सकता है, कौन कितनी ईंटें लगा सकता है सतयुग के निर्माण में, उस आधार पे उनका भाग्य बनता है। तो कौन है सबसे ज्यादा मददगार बाबा के बच्चे? और बाबा ने प्रश्न किया था कभी कि मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो जी, जो बाबा ने कहा, सभी उत्तर सही हैं, लेकिन उत्तर आया बाबा की तरफ से और साथ ही किसी भाई ने जवाब दिया, मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो कम से कम 8 घंटे मुझे याद करते हैं। मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे, हम सब बाबा को मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा मदद है वो मदद मैं कितनी कर पा रहा हूं। क्यों बाबा योग को इतना महत्व देते हैं? क्योंकि योग के आधार से ही सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। ये कलयुग सतयुग में तभी परिवर्तित होता है जब हमारी योग की ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये तमो प्रधान जो आत्माएं हैं वो सतो प्रधान तब बन पाती हैं, या हमारे अंदर के जो विकार हैं वो भी तभी दग्ध हो पाते हैं जब हम योग की ज्वाला प्रज्वलित करते हैं। न केवल संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति के 5 तत्व भी परिवर्तित होते हैं हमारे योग से, सारे ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तित होते हैं हमारी योग की शक्ति से। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे सबसे ज्यादा मददगार वो हैं जो योगी बच्चे हैं और कम से कम 8 घंटे मुझे याद करते हैं। अब हमें साथ साथ चेक करते हुए चलना है कि मेरे योग का चार्ट कितना है। बाबा कम से कम 8 घंटे कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं कहते, कम से कम इतना होना चाहिए। ज्यादा तुम जितना कर सकते हो उतना करो, मुझे खुशी होगी, लेकिन कम से कम इतना तो करो। अब मुझे ये देखना है कि मेरा योग का चार्ट कितना है और मैं अपनी योग के द्वारा कितनी मदद बाबा को प्रदान कर रहा हूं। ये मेरी खुद की मदद है, अपनी भी मदद है तो सृष्टि की भी मदद है, क्योंकि योग से पूरा ब्रह्मांड परिवर्तित हो जाता है, हमारी पूरी सृष्टि और साथ ही पूरी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। जो योगी हैं वही तो सारे कल्प हीरो पार्ट प्ले करते हैं, वही महान आत्माएं और वही पुण्यात्माएं हैं, वही आदर्श हैं, वही धुरी हैं सारी सृष्टि के, जिन्हें देख करके सारा संसार चलता है, आदर्श हैं। और ये वो समय है जबकि मैं ऐसा आदर्श बन सकता हूं। और यदि नहीं है तो कैसे करना तो है ना, या नहीं करना है? करना है ना। पहली बात तो दृढ़ संकल्प करें कि मुझे करना है, अन्यथा ये एक वीक संकल्प आ जाता है कि भाई हमसे नहीं होगा 8 घंटे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मन इधर उधर भागने लगता है, हम थोड़ी देर योग में बैठते हैं, मन एकाग्र ही नहीं होता, विचलित होने लगता है, कभी यहां चला जाता है कभी वहां चला जाता है। हम यहां स्टी हॉल में बैठे हैं, मन नक्की लेक का चक्कर लगाने लगता है। इधर उधर भागता रहता, अब 8 घंटे कैसे होगा? पहली बात, दृढ़ संकल्प करें। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो कार्य मेरे माता पिता ने मुझे कहा है, बाबा ने मुझे कहा है, वो मेरे लिए पॉसिबल है। पहले तो ये स्वीकार कर और ये दृढ़ संकल्प करो, बाबा ने कहा है तो मुझे करना है। क्या माता पिता किसी 2-4 साल के बच्चे को कुएं में पानी भरने भेजते हैं, या 8-10 साल का है उसको कार दे देते हैं कि जा तू ड्राइव कर? नहीं, उसकी जो क्षमता है, योग्यता है, उसे माता पिता जानते हैं और उसके आधार पे ही उसे काम देते हैं। अब यदि बाबा ने मुझे ये कहा है तो जरूर मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कर सकता हूं, तब तो ये कहा है, नहीं कर सकता होता तो वो कहते ही नहीं मुझे, है ना। उन्हें पता है कि इन्होंने किया है और अब भी कर सकते हैं, लेकिन शायद इधर उधर लटके हुए हैं, वहां से निकलेंगे तब करेंगे, इसलिए बार बार बाबा कहते रहते हैं कि करो। तो एक दृढ़ संकल्प कि मुझे करना है, बाबा ने कहा है तो मुझे करना ही है, ये दृढ़ता लाएं, क्योंकि बाबा जो कहते हैं उसके साथ हमें शक्ति भी देते हैं। यदि ब्रह्मा बाबा के अंदर दृढ़ता नहीं होती तो क्या आज यज्ञ इस मुकाम पे होता? कितने सारे विघ्न, कितनी सारी बाधाएं आए, उनके भवन को जला दिया गया, पिकेटिंग की गई, ना जाने क्या क्या कहा गया बाबा को। बाबा दृढ़ रहे, अचल अडोल रहे। यदि दृढ़ता नहीं होती तो आज हम सब भी तो यहां नहीं होते ना। एक ब्रह्मा बाबा की दृढ़ता ने इतनी सारी आत्माओं को सुकून दिया, नया जीवन दिया, शक्ति दी। हम भी तो मास्टर ब्रह्मा हैं, हमारे अंदर भी तो उसी दृढ़ता की आवश्यकता है। तो पहली बात, मैं कर सकता हूं। कौन कौन कर सकते हैं, जरा हाथ उठाएं। वाह, बहुत सुंदर, शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से तो योग किया शैलेंद्र भाई, एकदम ज्वाला जलने लगेगी मधुबन में। बहुत सुंदर, दृढ़ संकल्प। दूसरी बात, प्लानिंग करें। करना तो है, मेरे अंदर दृढ़ता है, लेकिन प्लानिंग करें कि कैसे करना है। जब तक प्लान नहीं बनाएंगे तब तक उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा। बाबा ने कभी कहा कि जैसे रोज अमृत वेले के बाद तुम अपनी दिनचर्या बनाते हो, तन की दिनचर्या बनाते हो, वैसे ही अपने मन की भी दिनचर्या बनाओ। संसार में जो VVIPs होते हैं उनके एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का टाइम टेबल फिक्स होता है कि इस मिनट में यहां जाएंगे, इस मिनट में यहां जाएंगे। होता है कि नहीं होता? और बाबा कहते हैं तुम तो VVVV कितने सारे V लगा लो, वो भी कम है, इतने बड़े VIP हो, सारी कल्प के VVIP हो। तो क्या तुम अपने तन की और मन की दिनचर्या बनाते हो? हम तन की तो चलो बना लेते हैं कि हाँ भाई हम ये करेंगे, इतने बजे हम रोटी में जाएंगे, इतने बजे हम सब्जी में जाएंगे, इतने बजे हम योग में जाएंगे, इतने बजे हम मुरली में जाएंगे, ये तन की तो हम बना लेते हैं। मन की बनाते हैं, ये थोड़ी मिसिंग है। और यदि मन की नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा योग का चार्ट कैसे बढ़ेगा? अपनी दिनचर्या को कम से कम हम चार भागों में बांट लें, कभी ऐसा कर लें, वैरायटी रखें। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, दिनचर्या को चार भागों में बांट लिया कि भाई सुबह 4 बजे से 8 बजे तक हम इस प्रैक्टिस में रहेंगे, 8 से 12 बजे तक इस प्रैक्टिस में रहेंगे, 12 से 6 बजे तक इस प्रैक्टिस में रहेंगे, 6 से रात को 10 बजे तक सोने से पहले तक इस प्रैक्टिस में रहेंगे। सिंपल सिंपल, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। या फिर आज सारे दिन जो भी मैं लौकिक चीजों को देखूंगा उसको मैं अलौकिक में परिवर्तित करूंगा, जैसे ब्रह्मा बाबा किया करते थे। भाई एरोप्लेन को देखा उड़ते हुए, मुझे भी अपनी ऐसी उड़ती कला बनानी है। कार को या गाड़ी को देखा तो मेरा शरीर भी एक गाड़ी है, मैं भी आत्मा इसमें बैठी हुई हूं, इसको चला रही हूं, राइट? किसी झाड़ को देखा तो कल्प वृक्ष को याद कर लिया, कल्प वृक्ष कितना सुंदर है, हम नीचे बैठे हुए हैं तपस्या कर रहे हैं। आदत डालें लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करने की, तो खुद देखें कि कैसे विचार परिवर्तित होते हैं, मन हल्का होके ऊपर की ओर जाता है। प्लान बनाएं, अपनी प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। जब प्लान करेंगे तो याद घंटे योग करना आपके लिए इजी हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कर्म योग को जोड़ें, कैसे कैसे कहां कहां करना है, जिसको जिसको रुचि होती है ना वो कहीं से भी टाइम ढूंढ के निकाल लेता है। अच्छा, हम फ्रेश होने तो जाते हैं वॉशरूम में है, अब वॉशरूम में तो और कोई काम है ही नहीं, वहां क्या हम 15 मिनट 20 मिनट आनंद से बाबा के साथ स्नान नहीं कर सकते? योग हो सकता है। हम सब 3 टाइम भोजन करते हैं, भोजन मौन में रह के क्या उस टाइम को योग में योग युक्त नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। रुचि की बात है कि हम कहां कहां टाइम निकाल सकते हैं। इवन आप अपने कमरे से लेकर के यदि रोटी डिपार्टमेंट तक भी जा रहे हो तो भी उस टाइम को आप यूज कर सकते हो कि मैं इस प्रैक्टिस में वहां तक जाऊं। जब आप रोटी बेल रहे हो तो भी तो बातचीत करते हुए बेलने की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ जी जी, आप आत्मिक दृष्टि देते हुए भी तो बात कर सकते हैं ना। मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। प्लान करें कहां कहां क्या क्या किया जा सकता है, यदि प्लानिंग करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और तीसरी बात, यदि हमें 8 घंटे योग को बिल्कुल पहुंचना है, सतत अभ्यास की बहुत जरूरत है, सतत परिश्रम की जरूरत है। हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, 5 दिन चार्ट रखते हैं उसके बाद 6वें दिन छोड़ देते हैं, कुछ दिन अच्छा अमृत वेला हुआ उसके बाद फिर थोड़ा सा डल हो जाते हैं कि आज थोड़ा सा सो लिया जाए, आज थोड़ी थकान लग रही है, कमर में दर्द हो रहा है, शायद मैंने ज्यादा सेवा कर ली है, कहीं ना कहीं हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, राइट? सतत अभ्यास। लौकिक में भी जो लोग विजय श्री को प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। 1972 में मार्क्स स्पीड्स नाम का एक तैराक था, उसने 7 गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक में। 7 गोल्ड मेडल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तब तक किसी ने भी एक ओलंपिक में इतने गोल्ड मेडल हासिल नहीं किए थे। एक पत्रकार उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि वाह, आज तो आपका बहुत लकी डे था, आपने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए। तो उसने कहा, भाई ये लकी डे कुछ नहीं होता, तुमको पता है मैं 1968 से रोज, 1972 में उन्होंने जीता था, 1968 से रोज, रविवार को छुट्टी भी मैंने नहीं ली, रोज 8 घंटे मैंने स्विमिंग पूल में बिताए हैं। 68 से 72 तक रोज 8 घंटे, आप 1 घंटे 2 घंटे पानी में बैठ के दिखाओ, आपका पूरा शरीर सिकुड़ जाएगा। मैंने रोज 8 घंटे प्रैक्टिस की है। 15 सेकेंड के परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तक कोई एथलीट मेहनत करता है, तब जाके वो सफल होता है। कंटिन्यू प्रैक्टिस, और हम थोड़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद छोड़ देते हैं तो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे? सतत अभ्यास, हारे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, कंटिन्यू आगे बढ़िए, डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। एक लगन होनी चाहिए, एक उत्साह होनी चाहिए कि बाबा ने कहा है मुझे करना है। ये कंटिन्यूटी आपको वहां तक पहुंचाएगी, ठीक है? जब तक आप मधुबन में हैं, आप सेवा में हैं, लकी हैं, कोई बाहर का तामझाम नहीं है, कोई गृहस्थ की कोई झंझट नहीं है, है क्या? या फोन आते रहते हैं कि भाई आ जाओ, रोटी हमारी जल रही है, आप अच्छी अच्छी रोटी बना के खिलाओ। भाई साहब फोन तो नहीं करते माताओं को? नहीं करते ना? देखिए भाई साहब कितने अच्छे हैं, वो वहां योग कर रहे हैं, कम से कम आप यहां बैठ के तो अच्छा योग करें। हा? घर को याद नहीं, यहां बैठ के मुझे अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो सबसे बड़ी मदद, योग की मदद हमें बाबा को करनी है। दूसरी जो मदद जो बाबा हमसे चाहते हैं, जो आपने भी कहा, वो है पवित्रता। इसीलिए बाबा जब इस धरा पे आए तो उन्होंने हमें यही कहा, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। पांडवन के गेट पे क्या लिखा हुआ है? सबको, हम सारे संसार को ये संदेश देते हैं, योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के आधार से ही न केवल मेरे गुण और शक्ति जागृत होंगे, पवित्रता के आधार से ही प्रकृति भी पावन होगी। हमारी पवित्रता की भगवान को आवश्यकता है, हमारी पवित्रता की प्रकृति को आवश्यकता है, हमारी पवित्रता की सारे संसार की आत्माओं को आवश्यकता है, क्योंकि सारा संसार काम अग्नि में जल रहा है ना, जल रहा है ना। बाबा ने कहा पूरा संसार जल रहा है काम की अग्नि में, केवल तुम बच्चे हो जो पवित्रता की शीतल छींटे डालने वाले हो। यदि हमारे अंदर भी ये विकारी संकल्प, अपवित्रता के संकल्प यदि आते हैं, तो संसार की उन आत्माओं को पवित्रता का दान कौन देगा? भगवान ने हम पे विश्वास किया है कि बच्चे तुम हो जो पवित्र रह के सारे संसार को पवित्र बनाने वाले हो, और कल पहले तुमने ही बनाया है, तो हम अपनी पवित्रता में स्ट्रांग बने। इससे कोई समझौता नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, मुझे अपनी पवित्रता को बहुत पुख्ता करना है, स्ट्रांग करना है। और जहां जहां से यह पवित्रता के संकल्प प्रवेश करते हैं, उनको स्ट्रांगली हम बंद करें, चाहे हम इंटरनेट के थ्रू हम अपने अंदर डाल लेते हैं, या टेलीविजन से, या राह चलते, या पास्ट के संस्कार, व्हाटएवर जो भी है, बहुत स्ट्रांगली सारे खिड़की दरवाजे अपवित्रता के लिए बंद, उसको सस्टेन ना करें, उसको एंजॉय ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए घातक है। बाबा ने कहा है कि जैसे स्थूल अग्नि किसी भी चीज को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही काम की अग्नि तुम्हारे पुण्य को जलाकर नष्ट कर देती है। हम इतना पुण्य जमा कर रहे हैं आत्माओं की सेवा करके, और काम की अग्नि उसे जला रही है, तो कोई फायदा हुआ? फिर हम कहते हैं कि अनुभूति नहीं हो रही है हमको, हम उड़ नहीं रहे हैं, पहले तो हम बहुत उड़ा करते थे, अभी पता नहीं हमारे पंख कहां चले गए। कहां चले गए? कहीं ना कहीं वो जल जाते हैं ना, कहीं ना कहीं हम जो बल जमा कर रहे हैं वो नष्ट हो रहा है ना। इसीलिए पवित्रता में बहुत स्ट्रांग। बाबा का एक साकार महावाक्य जिसने मेरे दिल को छू लिया था, बाबा ने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है। क्या तुम अपने बाप को भीख नहीं देंगे? सोच के देखें ना, भगवान जो सारे संसार को देने वाला है, त्रिलोकी नाथ है, उसकी बस एक संकल्प की आवश्यकता है, वो चाहे तो संसार में कुछ भी कर सकता है, कलयुग को सतयुग में बदल सकता है, वो सामने बैठ करके हमसे हमारी अपवित्रता मांग रहा है। दिल से अपनी अपवित्रता अर्पित कर दें। अब ये संकल्प में भी ना हो, व्यर्थ भी अपवित्रता है, देह को देखना भी अपवित्रता है, इतनी सूक्ष्मता से हम पवित्रता को धारण करें कि मन पूरी तरह निर्मल हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे तो एक विदेशी महिला उनके पास आई और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहते हूं। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपकी जैसा बहुत बुद्धिमान, बहुत गुणवान, बहुत तेजोमय, बहुत प्रकाशमय, ऐसा तेजस्वी पुत्र मुझे हो। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या इसकी गारंटी है कि ऐसा ही पुत्र होगा? आप ऐसा क्यों नहीं करती? जब मेरे ही जैसा आपको तेजस्वी पुत्र चाहिए तो आप मुझे ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेते? कितनी सुंदर बात है ना, इतनी पवित्रता की पराकाष्ठा, इतनी ऊंचाई, ऐसी पवित्रता और ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर हो कि कहीं भी हलचल ना हो। और यदि सारे कल्प को यदि आप देखें तो अपवित्रता का पलड़ा बिल्कुल हल्का सा है, पवित्रता का पलड़ा ही भारी है या नहीं? आप अपने पांचों स्वरूपों को देखो, पूरी सृष्टि को देखो, अपने पाठ को देखो। हमारा अनादि स्वरूप संपूर्ण पवित्र है, हमारा आदि स्वरूप संपूर्ण पावन है, हमारा मध्य स्वरूप जिसकी पूजा हो रही है वो भी संपूर्ण पवित्र है, हमारा ब्राह्मण स्वरूप वो भी पावन है, फरिश्ते बनेंगे वो भी पवित्रता है। बीच में थोड़ा सा हमारा जो भी हलचल हुई और जिसके कारण हम नर्क में आ गए ना, पवित्रता के कारण इस सृष्टि स्वर्ग थी, हमारा जीवन स्वर्ग था, और अपवित्रता ने ही हमारे जीवन को, सृष्टि को नर्क बनाया है। अब यदि हमें भगवान को फिर से मदद करनी है स्वर्ग बनाने में सृष्टि को, तो पवित्रता को अंडरलाइन, हल्के नहीं। अपनी डायरी में एक बहुत बहुत पहले एक बात लिखी थी, वो भी बहुत प्रेरक है, मुझे प्रेरणा देती है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं शुरुआत में, कि तुम्हारे 5 मिनट की कामांधता तुम्हारे पूरे 5000 वर्ष को अंधकार में बना सकती है। अब तुम्हें विचार करना है कि तुम्हें क्षणिक दैहिक सुख चाहिए या पूरे 5000 वर्ष का दीर्घकालीन सुख चाहिए जो अखंड है, अनंत है। और ये सुख जो सुख भासता है ये तो काकविष्ठा के समान है, सुख है भी नहीं। बाबा तो कहते हैं कि ये काम आदि मध्य अंत सुख देता है, दुख देता है, दुख देता है। तो क्यों ना इस कांटे को पूरी तरह हम नष्ट कर दें। तो दूसरी बात, दूसरी मदद भगवान को कौन सी? हमारी पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता, इसमें कोई समझौता नहीं, पूरी सूक्ष्मता से हम इसकी धारणा करें। तीसरी मदद जो हमें भगवान को करनी है, जो बाबा हमसे चाहते हैं, वो है, बाबा चाहते हैं हम यज्ञ सेवक और यज्ञ रक्षक बने, जिसको बाबा ने कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें अंत में मदद जरूर मिलती है, क्योंकि उन्होंने सर्विस में मदद की, बाबा उन्हें मदद करते हैं। तन से, मन से, धन से या जन से जितनी हम सेवा करेंगे उतने बाबा के मदद के अधिकारी बन जाएंगे, उतने उनकी दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बहुत पहले जब मैं समझता हूं 74-75 की बात है, माता जी आई हुई थी मधुबन में, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो बाबा से मिलें, लेकिन बाबा का उस समय सीजन नहीं था। अचानक बाबा आ गए अपने कमरे में, दादियां सब आई मिली, दादी ने पूछा कि बाबा कैसे, मतलब प्रोग्राम नहीं था, अचानक आपका आना हुआ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची का, उस माता जी का बहुत तीव्र संकल्प था कि मैं मधुबन आई हूं तो बाबा से मिलूं, और ये बच्ची यज्ञ की मददगार बच्ची है, यज्ञ की इसने बहुत सेवा की है, धन से भी तन से भी, इसलिए बाबा बंधा हुआ है बच्ची की जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए। तो भगवान भी तब बन जाते हैं जब हम इस प्रकार यज्ञ की सेवा करते हैं। इसलिए दिल से जो यज्ञ हमें इतना सुख दे रहा है, जो यज्ञ हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है, उस यज्ञ की हमें कितनी ना दिल से सेवा करनी है, दिल से सेवा। और जितनी सेवा करेंगे, प्रत्यक्ष फल का भी तो अनुभव हम करते हैं ना, करते हैं ना। थोड़ा सा हमने किसी को ज्ञान सुनाया, कितना मन आनंदित अनुभव करता है। यज्ञ की थोड़ी सी हमने कर्मणा सेवा की, इंस्टेंट हमें कितनी खुशी प्राप्त होती है। कोई भी सेवा करें, फ्यूचर की बात तो है ही कि हमें बहुत कुछ मिलेगा। बाबा कहते हैं एक ईंट लगा दिया सोने के महल मिल जाएंगे, कितना सस्ता सौदा है। बाबा हमारा कखपन ले रहे हैं और हमें इतना कुछ दे रहे हैं, ऐसा सौदा तो कहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ एक्सचेंज ऑफर संसार में हो ही नहीं सकता ना, कि अपना जो भी पुराना है, कचरा है, कखपन है, सब मुझे दे दो, मैं तुम्हें रिटर्न में इतना कुछ बना करके दूंगा। दिल से सेवा, सर्विस के लिए जब भी कहा जाए तुरंत हाजिर, उसमें ना नुकुर नहीं कि ये नहीं कर रही है, मुझे ही बोला जाता है ना, ये तो सोई ही रहती है कमरे में, कभी सेवा के लिए आती ही नहीं है। ऐसा नहीं, उसका अपना पार्ट और भाग्य है, मेरा अपना पार्ट और भाग्य है, उसको देखना है। जब बाबा आपको लक्ष्मी नारायण वाली बात आएगी कि लक्ष्मी का पद मैं उसको दूं या इसको दूं, तो कौन आगे आएगा, मैं ही आगे आऊंगी ना, नहीं बाबा मुझे लक्ष्मी का पद चाहिए, तब ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं बाबा इसको दे दो, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। इसीलिए कंपैरिजन नहीं, सेवा में हमेशा दिल से हाजिर, और साथ ही साथ यज्ञ के रक्षक भी हम बने। यज्ञ रक्षक, जिस यज्ञ को मम्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने, बड़ों ने अपने खून पसीने से सींचा है, यहां तक पहुंचाया है, उसकी रक्षा करना ये हम सबका दायित्व है हम सबका। ठीक है, परिवार में कभी 19-20 होता है, आपके परिवार में 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, वहां 19-20 नहीं होता, बातें होती हैं या नहीं होती हैं, होती है। तो क्या आप अपने परिवार की बातें शहर में निकल के, गली में निकल के ढिंढोरा पीटते हैं कि आज मेरे घर में ये हुआ, आज मेरे घर में ये हुआ, ऐसा ढिंढोरा तो नहीं पीटते ना आप, या पीटते हैं? नहीं, हमारा ये 9 लाख ब्राह्मणों का इतना प्यारा सा परिवार है। बाबा कहते हैं वन वन की काठी है, अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं, इसीलिए बातें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन परिवार की बात परिवार। बड़ी दादी एक बहुत प्यारी सी बात कहा करती थी, दादी कहा करती थी कि मैं बड़ी इसलिए हूं क्योंकि सबकी बात सुनती हूं, सहती हूं और समा लेती हूं। ये बड़ों की खासियत है, विशेषता है। हम भी बहुत कुछ देखते हैं, सुने भले, लेकिन उसे समा लें, उसे फैलाएं नहीं, ऐसी चीजें फैलाएं जो अच्छी है। मक्खियां भी तो 2 प्रकार की होती है ना, एक होती है जो फूल पे बैठती है, अच्छी चीज पे बैठती है, खुशबू लेती है, और दूसरी होती है वो गंदगी पे बैठ जाती है। सारा सुंदर शरीर छोड़ के भी वो जहां पे छोटा सा चोट लगा हुआ होगा वहां पे जाके बैठ जाती है। हमें ऐसी मक्खी बनना है जो गुणों को लेती है और गुणों को ही फैलाती है। कम से कम हम सर्विस नहीं कर सकते तो डिससर्विस हमसे ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब विद्यालय इतना बड़ा हो गया है, बाबा का नाम, ब्रह्म कुमारी का नाम इतना बड़ा हो गया है कि जैसे ही आप एक सफेद साड़ी पहनती हैं, पूरा विद्यालय को आप रिप्रेजेंट करते हो, पूरे विद्यालय को। और यदि आपसे कुछ ऊपर नीचे होता है तो ब्रह्म कुमारियां ऐसा करती हैं, राइट? ये सर्विस हुई या डिससर्विस हुई? और आजकल सोशल मीडिया तो ऐसा है कि कोई भी चीज फटाफट पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है, अच्छी बातें भी तो बुरी बातें भी। इसलिए बहुत ध्यान रखें, हम यज्ञ रक्षक बने, इस यज्ञ को पुष्पित करना, पल्लवित करना, इसे विकसित करना, इसे जन जन तक बाबा का जो मूल संदेश है उसको पहुंचाना, ये हम सबका दायित्व है, चाहे अपने चाल से, चलन से, चेहरे से या अन्य जो माध्यम है, इस बात का ध्यान रखें। परिवार में यदि कहीं कुछ देखते भी हैं तो बाबा का एक महावाक्य बहुत गहन है, इसे याद रखें। बाबा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, किसने चुना है उन्हें, किसकी सिलेक्शन है, स्वयं भगवान ने चुना है। जो भी है मेरे आसपास, जैसे भी हैं, भगवान ने सिलेक्ट किया है, और यदि मैं उनमें कोई कमी देखता हूं, डिफेक्ट निकालता हूं, तो बाबा ने कहा ये भगवान का डिसरिगार्ड है, भगवान ने चुना है इन्हें। कितनी ऊंची भावना बाबा हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, और यही तो हमारी परिवार की खासियत है, यही विशेषता है। संसार में लेग पुलिंग होती रहती है, ये आगे बढ़ रहा है इसकी पैर खींच दो, वो आगे बढ़ रहा है इसका पैर खींच दो, सारी तरफ राजनीति और हर तरफ खींचतान। हमारा ये ऐसा परिवार है कि जब हमारा कोई परिवार का सदस्य आगे बढ़ता है हमें दिल से खुशी होती है, हमारे दिल को बहुत आराम मिलता है, राहत मिलती है। बड़ी दादी कहा करती थी कि मेरे भाई बहनें आगे बढ़ें, मेरा दिल ठरे, अर्थात मेरे दिल को शीतलता मिले, खुशी मिले। ये बड़प्पन हम सबके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी कंप्लेन करो कि ये ऐसा है ऐसा है, नहीं, ये तो दुनियावी बात हो गई ना। इसीलिए यज्ञ के रक्षक भी और यज्ञ के सेवक भी, चाहे मन से, वचन से, कर्म से, जो भी हो सके हम अपनी तरफ से यज्ञ की सेवा में अवश्य लगाएं। तन लगाएंगे तो सुंदर तन मिलेगा, बाबा ने कहा। मन लगाएंगे तो मन सब बीमारियों से भी मुक्त होगा, स्वस्थ रहेगा। धन लगाएंगे तो सारे कल्प धन की कमी नहीं रहेगी, धनवान बनेंगे। और जन को लगाएंगे तो, हाँ जी, तो हमारे सारे संबंधी हमें अच्छे मिलेंगे ना, सुख देने वाले मिलेंगे। इसीलिए जो भी सेवा है दिल से हम यज्ञ की करते चलें। और चौथी बात जो बाबा को हमें मदद करनी है वो है बाबा की आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता। यदि सैनिक कमांडर की आज्ञा न माने तो क्या होगा, यदि कर्मचारी बॉस की आज्ञा ना माने क्या होगा, यदि ट्रैफिक पुलिस जो खड़ा हुआ है चौराहे पे उसकी आज्ञा, उसका निर्देश गाड़ी चलाने वाले ना माने क्या होगा, डॉक्टर की बात या डॉक्टर की आज्ञा मरीज ना माने क्या होगा, कमांडर की आज्ञा मानना या डॉक्टर की आज्ञा मानना या जो ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस खड़ा हुआ है उसकी आज्ञा मानना, बात मानना, ये उनकी मदद करना है या नहीं है। कमांडर की आज्ञा मानना कमांडर की मदद है ना। और यदि हम अवज्ञा करते हैं तो नुकसान किसे है, मुझे। और वहां तो चलो किसी मनुष्य की अवज्ञा हो गई, यहां तो स्वयं भगवान आज्ञा दे रहे हैं। वो जो त्रिलोकी नाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सारी सृष्टि को जानने वाले हैं, मेरा कल्याण और अकल्याण किसमें है, जो इस बात को सबसे गहराई से जानता है, यदि मैं उसकी ही बात नहीं मानता तो मेरा भला कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। अब तक तो हम परमत पे और मनमत पे चलते आए हैं ना, और रिजल्ट क्या हुआ, हम सबके सामने गिरे ही है ना, कलयुग में पहुंच गया ना, हमारी कला, काया, शकल, अकल सब चौपट हो गई। बाबा कहते टिप्पड़ भी घिस गई है, ना शकल रही है ना अकल रही है, कुछ भी नहीं बचा है। क्यों, परमत पे चलते आए, मनमत पे चलते आए। अब भगवान आए हैं जो श्रीमत हमें दे रहे हैं, आज्ञा हमें दे रहे हैं, उस आज्ञा को मान के हम अपने जीवन को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, उस आज्ञा को मान के पूरा कल्प अपना हम संवार सकते हैं। ईश्वर की आज्ञा है, किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है, भगवान ने कहा है, यह भगवान वाच है। श्री राम को हनुमान जी क्यों पसंद थे? क्योंकि आज्ञाकारी थे, आज्ञा दी और हनुमान जी उड़े, ये करना है हनुमान जी, चल पड़े और काम किया, वापस आके चरणों पे बैठ गए। इसीलिए हनुमान जी का भी श्री रामचंद्र जी के साथ गायन है, क्योंकि आज्ञाकारी थे। कभी पूछा कि क्यों प्रभु मुझे क्यों बोल रहे हो, सुग्रीव को बोल दो, अंगद को बोल दो, फलाने वानर को बोल दो, कभी बोला उन्होंने? ये हनुमान जाओ संजीवनी ढूंढ के लाना है, भाई कहीं तो हिमालय में है, पता नहीं है, तुमको लाना है। जी प्रभु। पूछा भी नहीं कि प्रभु इतना बड़ा हिमालय है, लंबा चौड़ा है, अब मेरी कहीं पूरी उम्र ना निकल जाए, मैं बुजुर्ग ना हो जाऊं, ढूंढते ढूंढते। पूछा कभी? कहा? आज्ञाकारी। दादी जानकी जी को 5 रुपए हाथ में रखे बाबा ने कहा कि बच्ची जाके सेवा करने। दादी ने क्या क्यों किया कि बाबा 5 रुपए में क्या 5 रुपए में मैं खाऊंगी क्या, रहूंगी कहां, गाड़ी में कहां से कहां जाऊंगी, क्या क्यों किया? जी बाबा 5 रुपए में ना बहुत बड़ी चीज है, भगवान ने दिए हैं, चलो। गुलजार दादी को लखनऊ भेज दिया, बाबा ने कहा बच्ची लखनऊ जाना है। लखनऊ किस दिशा में है, किस चिड़िया का नाम है, शहर है, गांव है, पूरब में है, पश्चिम में है, कुछ पता नहीं। जी बाबा जाएंगे, किस में जाना है ये भी नहीं पता, कहां रहना है वो भी नहीं पता। गंगे दादी को, मनोहर दादी को बाबा ने दिल्ली भेज दिया, कहां रहना है, छत भी नहीं थी जहां वो रहते थे, छत भी नहीं था, 2 बहनें, यंग बहनें, ना छत ना कोई सुरक्षा। जी बाबा ने कहा है जाएंगे, आज्ञा करें। हां जी, सोचिए जरा, विचार करें, यदि दादियों ने ऐसी आज्ञाकारिता न दिखाई होती तो क्या आज यज्ञ ऐसा होता? यदि दादियों ने ऐसी आज्ञाकारिता ना दिखाई होती तो क्या आज इतने दिल से प्यार से हम उन्हें याद कर रहे होते? बहुत ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने बाबा ने कहा होगा और उन्होंने नानुकुर किया होगा, ऐसे भी रहे होंगे, क्या आज हम उन्हें याद करते हैं? उनका नाम भी हमें नहीं पता है। आज्ञाकारिता, जो आज्ञाकारी होते हैं ना, भगवान के दिल पे चढ़ जाते हैं, भगवान ने कहा मैंने किया, दुआओं के पात्र हो जाएंगे, मदद के पात्र हो जाएंगे, इसलिए आज्ञाकारी बने। कैसी आज्ञाएं? अपनी दिनचर्या जो बाबा ने हम लोगों को दी है कि दिनचर्या का पालन करें। पहली आज्ञा तो अमृत वेला ही है, ये बच्चे सुबह सुबह उठ करके मुझे याद करो। अब यदि सुबह ही उठते ही हमारी पहली आज्ञा की ही अवज्ञा हो गई तो दिनचर्या तो सारी बिगड़ जाएगी ना। भगवान की आज्ञा है अमृत वेले उठ करके मुझे याद करो, मुरली मुरली क्लास में आकर के मेरे सम्मुख। आज भी बाबा ने कहा कितना सुंदर मुखड़ा है बाबा का, मुखड़ा देखने आते हो तुम बच्चे मेरे यहाँ, तो क्लास में जाकर के बाबा का मुखड़ा देखें। जो डांस क्लास में होती है ना वो कहीं नहीं हो सकता। आप पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप में आपके पास मुरली आ जाती है, आप स्पीकर पे सुन सकते हैं, ठीक है सेवा है वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से अलबेले होकर के हम क्लास में ना जाएं, ये अवज्ञा है। आज्ञाकारी बने। ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा होता है, हम बहुत प्यार से खड़े होकर के, कोई भले चल रहा हो मैं खड़े होकर के बाबा की याद में अपने मन को स्थिर करूं। संध्या योग बाबा ने नियम दिया है हमें, संध्या योग में अवश्य हम बैठें। ठीक है शरीर के लिए कई लोग वॉकिंग भी करते हैं, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि लोग तो वॉकिंग करते रहते हैं योग नहीं करते, नहीं, शरीर के हिसाब से कोई वॉक कर रहा है याद में ही वॉकिंग कर रहा है, मैं लेकिन बैठ करके मधुबन में 1 मास 2 मास का मुझे वक्त है, गहराई से मैं अपनी तपस्या करूं, अपने योग के चार्ट को वहां तक लेकर के चलूं, ये हमें करना है, ये आज्ञा है। दिनचर्या की आज्ञा के साथ साथ बाबा की आज्ञा है सबको सुख प्रदान करो, किसी को दुख मत दो। मैं दुख तो नहीं देता या दुख तो नहीं देती अपने कर्मों से या अपने बोल से। बाबा कहते हैं अपने विकारों का त्याग करो, विकारों को यूज मत करो, कहीं विकार को यूज तो नहीं कर लेते। सूक्ष्म चीजें हैं,
हमें चेक करना है और अपने आप को कंप्लीटली चेंज करना है। तो ऐसे गहराई से इन बातों पर, बाबा की आज्ञाओं पर, कि जो बाबा आज्ञा दे रहे हैं मैं कितना अमल कर रही हूं, जितना बाबा की आज्ञाओं पर चलेंगे उतनी उनकी मदद के भी अधिकारी बनेंगे और साथ साथ दुआओं के भी अधिकारी बनेंगे। लेकिन इसे हट करके एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। माता पिता, बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को मदद अवश्य करते हैं, कैसा भी बच्चा हो। लेकिन परमात्मा की मदद मिलती, इसीलिए परमात्मा को तो कहते हैं ना कि वो प्यार का सागर है, मदद का सागर है, दयालु है, कृपालु है, इसीलिए तो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव है उसका। ऐसा नहीं है कि आप मदद करेंगे तभी वो आपको मदद करेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप मदद करेंगे तो मदद के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन यदि केवल मदद मांगते रहेंगे तो भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर रह गया? भक्त भी तो मांगते ही थे ना, भगवान मुझे ये मदद कर दो, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस ठीक चला दो, घर में बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इन बच्चों को सद्बुद्धि दे दो, मांगते ही तो रहे हैं ना हम उनसे, भगवान से, और भगवान ने मदद भी हमें की है। लेकिन जहां से हमने शुरुआत की थी कि मदद का अनुभव क्यों नहीं होता, मदद भगवान देते हैं, आप मदद ना करो तो भी वो देते हैं, लेकिन हम उनकी मदद को समझ नहीं पाते, उनकी मदद को रिसीव नहीं कर पाते, ये हमारी अपनी कमी हो जाती है। भक्ति में कहते हैं ना, एक व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त था, नदी के किनारे ही एक टीले पे उसकी कुटिया थी। अब नदी में बाढ़ के दिन थे, बारिश का दिन था, बाढ़ आने वाला था, तो आसपास के लोगों ने कहा कि भाई बाढ़ आने वाला है, आप यहां से चलो। उसने कहा नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन फिर भी वो नहीं माने, लोग चले गए। अब चलो पानी, बाढ़ आने लगा तो भी दोनों तरफ से पानी आ गई, तो एक नाविक आया, उसने कहा कि आइए आइए महाराज बैठ जाइए, मैं आपको ले चलता हूं। बोले नहीं नहीं भगवान मेरी मदद करेंगे, आप जाओ, भगवान बैठे हुए। अब फिर से और ज्यादा पानी आने लगा, केवल उसका थोड़ा सा बच गया, वो ऊपर आ गया देखने के लिए कि भाई अब क्या होगा। एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि आ जाइए महाराज ऊपर, उसने कहा नहीं नहीं भगवान मेरी मदद करेंगे, अब वो भी चला गया। अब बेचारा बह के चला गया, मृत्यु हो गई, बहुत नाराज होकर भगवान के पास पहुंचा, क्या है प्रभु आप तो मदद किए नहीं मेरी, मैं कितनी भक्ति करता था आपकी। भगवान ने कहा भाई तीन बार तो मैंने मदद की, और क्या करूं मैं तेरे लिए, एक बार मैंने तेरे पड़ोसियों को भेजा कि भाई चल बाढ़ आने वाला है, दूसरी बार मैंने एक नाव वाले को भेज दिया, तीसरी बार हेलीकॉप्टर भेज दिया तुम्हारे लिए, भाई मैं और क्या करूं तेरे लिए। तो कई बार हम भगवान की मदद को समझ नहीं पाते हैं, हमें उसकी मदद को समझना है और साथ ही साथ उस मदद को अपने जीवन में लाना भी अवश्य है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, मदद करेंगे भी बाबा को और मदद के अधिकारी बनेंगे, और साथ ही साथ जो बाबा देना चाहते हैं उसको लेकर के सारे संसार की आत्माओं तक भी हम अवश्य पहुंचाएंगे। खूब आगे बढ़ें, उन्नति करें, आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शांति।